नानी माँ ने आस्था की खूबसूरती से अरमान को उसके पीछे भेजना चाहा था। अब जैसे ही आस्था तैयार हुई, वो एकदम गजब लग रही थी। वो बड़ी ही खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। उसका बेबी बम्प हल्का हल्का नजर आ रहा था, लेकिन वो भी आस्था की खूबसूरती को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा था। आस्था ने हाथों में भरकर चूड़ियां पहनी थी, हल्का सा फूलों वाला पीले रंग का मांगटीका उसने लगाया था और साथ ही साथ एक छोटी सी पीले रंग के फूलों से बनी नथ पहनी थी। बाकी उसने गले और कानों में कुछ नहीं पहना था, बालों को खुला रखा था। उसी में ही वो बड़ी खूबसूरत लग रही थी। फिर जैसे ही आस्था तैयार होकर नानी माँ के साथ कमरे से बाहर निकली, बाकी सब पहले ही बाग में चले गए थे। लेकिन अरमान, जो आस्था के आने का इंतजार कर रहा था, जैसे ही उसने आस्था को देखा, बिना पलक झपकाए वो अपनी खूबसूरत बीवी को निहारता रहा। आस्था पर से उसकी नजरें हट ही नहीं रही थी। आस्था समझ चुकी थी कि अरमान इस वक्त हॉल में मौजूद है और उसे ही देख रहा है, लेकिन जानबूझकर आस्था ने अरमान की तरफ नहीं देखा था। वो उसे पूरी तरह से अनदेखा करते हुए बाग की तरफ जाने लगी। तभी अचानक अरमान ने आस्था का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और आस्था अरमान के सीने से लग गई। उसने अपनी नाक सहलाते हुए और अरमान को घूरते हुए मुंह फुलाते हुए कहा, ये अब क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। तभी अरमान ने बिना आस्था की कोई बात सुने उसकी गर्दन पर चुंबन कर लिया था। अब आस्था अरमान की इस हरकत पर गुस्से से भर उठी और अरमान से खुद को छुड़ाते हुए जल्दी से बाग की तरफ जाने लगी और उस पर चिल्लाई, आखिर आप ऐसा कर सकते हैं, ये क्यों किया आपने। आस्था को यह एहसास नहीं रहा कि वो इस वक्त बाग में है और सबने उसकी आवाज सुन ली है। तभी नानी माँ ने आस्था की तेज आवाज सुनकर कोमल आवाज में कहा, क्या हुआ गोरी बेटा, क्या किया दामाद जी ने। अब नानी माँ का सवाल सुनकर आस्था शर्मिंदा सी हो गई थी। उसे समझ में नहीं आया कि वो नानी माँ को क्या जवाब दे कि आखिरकार उनके प्यारे दामाद जी ने उसके साथ क्या किया था। तभी अविनाश तुरंत आस्था के पास आया और उसे कंधों से पकड़कर फिक्र करते हुए बोला, क्या बात है गोरी, गोरी बता, क्या कुछ कहा मिस्टर सिंघानिया ने, तुम मुझे अभी बता सकती हो, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। तब दादाजी भी तुरंत आस्था की ओर आकर खड़े हो गए और कठोर आवाज में बोले, क्या बात है बेटा, बोलो ना, क्या हुआ, कुछ बोला है इस नालायक ने, बता मुझे। अब अरमान अपने कोट के जेब में हाथ डालकर वहां पर बेफिक्री से खड़ा होकर शातिर अंदाज में मुस्कुराकर आस्था की तरफ देख रहा था। वो भी जानना चाहता था कि आखिर उसकी बीवी अब क्या जवाब देती है। लेकिन अब आस्था शर्मिंदा सी हो गई थी और उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे। वो कभी ऊपर और नीचे इधर उधर देखने लगी। उसे समझ नहीं आया कि वो इन सबको अब क्या जवाब दे। वहीं रश्मि की नजर तुरंत आस्था की गर्दन पर पड़ी, जहां पर हल्का हल्का लाली का निशान था। अब तो रश्मि को समझने में देर नहीं लगी कि आस्था किस चक्रव्यूह में फंसी है, इसलिए वो हल्का सा टॉपिक बदलते हुए बोली, अरे क्या आप लोग भी ना आस्था से बेकार का सवाल पूछने के लिए बैठ गए, और मियां बीवी की बात हो रही होगी और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इसमें दखल देना चाहिए। ये बोलकर रश्मि ने आस्था को सीधे सीधे शर्मिंदा करने वाली स्थिति से बचा लिया था और फटाफट से उसे लेकर स्टेज पर जाने लगी, जहां पर पहले से ही राधिका और एंजल मौजूद थी। वे दोनों बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। सुमित और अविनाश भी अब जाकर उन दोनों के पास बैठ गए थे। जल्द ही उन दोनों का मेहंदी फंक्शन बड़े ही धूमधाम से शुरू हो चुका था। वंशिका ने भी आस्था के जोर देने पर पीले रंग का फ्रॉक सूट पहना था और बड़ी ही मासूमियत और सादगी के साथ वो बड़ी प्यारी लग रही थी। लेकिन तभी अचानक वहां पर अजीब सा शोरगुल होने लगा। अब अरमान की भी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि अरमान की सिक्योरिटी को इस तरह से भेदना कोई मामूली बात नहीं थी। तभी अरमान ने अपने सामने जिस शख्स को देखा तो वो पूरी तरह से हैरान हो चुका था। सामने से राजवीर जिंदल अपने 8 से 10 बॉडीगार्ड के बीच चलकर आ रहा था। अब जैसे ही अरमान ने राजवीर जिंदल को वहां देखा तो अरमान के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई थी। वहीं नानी माँ, जो खुशी से अविनाश और एंजल को हल्दी लगा रही थी, अब उनकी नजर जैसे ही राजवीर जिंदल पर पड़ी तो कुछ पल उनकी सांसें थमसी गई थी और उनका दिल जोरों से धड़कने लगा। उन्होंने राजवीर को उस वक्त देखा था जब उनकी बेटी की बहरहमी से राजवीर जिंदल ने हत्या कर दी थी। अब तो नानी माँ के हाथ पैर पूरी तरह से कांपने लगे। वहीं अविनाश ने जैसे ही नानी माँ को देखा, उसने तुरंत नानी माँ को संभाल लिया था और अबीर को इशारा किया, क्योंकि कहीं ना कहीं अविनाश जानता था कि नानी माँ का अरमान को राजवीर को देखने के बाद रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा। इसलिए फटाफट से अविनाश ने अबीर के जरिए नानी माँ को सीधा अंदर सिंघानिया मेंशन के अंदर भिजवा दिया गया था और वहां पर डॉक्टर की टीम पहले से ही मौजूद थी। आज अविनाश, अबीर और आस्था ने फुल प्रूफ प्लानिंग की थी। उसी के प्लान के अनुसार वो लोग सारा काम जारी रख रहे थे। जैसे ही राजवीर वहां आया, अरमान सिंघानिया आगे बढ़कर राजवीर को गले से लगा लिया था। ये देखकर आस्था के खून खौल उठे, लेकिन फिलहाल उसने अपने इमोशंस पर जैसे तैसे कंट्रोल किए हुए था। लेकिन ठीक उसी वक्त दादाजी तुरंत राजवीर और अरमान के बीच में आ गए थे और राजवीर को अरमान से दूर करते हुए लड़खड़ाती जुबान में बोले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अब राजवीर घूर कर दादाजी को देखने लगा, क्योंकि राजवीर दादाजी को अच्छी तरह से पहचानता था। बचपन में जब अरमान राजवीर से चिपका करता था, दादाजी हमेशा जाकर अरमान को राजवीर से दूर कर दिया करते थे। कितनी बार राजवीर के मन में ख्याल आता था कि उसे बूढ़े की जान ले लेनी चाहिए, क्योंकि वो अरमान और उसके बीच में सबसे बड़ी रुकावट थे। लेकिन हर बार वो सिर्फ अरमान के प्यार के लिए उन्हें छोड़ दिया करता था। आज इतने सालों बाद जैसे दादाजी ने एक बार फिर से अरमान को राजवीर से दूर किया, तो राजवीर घूर कर दादाजी को देखने लगा। तभी अरमान दादाजी से ठंडी आवाज में बोला, ये आप क्या कर रहे हैं? आप इस तरह से अंकल को मुझसे दूर नहीं कर सकते हैं। जैसे ही अरमान ने सख्त अंदाज में ये कहा था, दादाजी घूर कर अरमान को देखने लगे। इस वक्त ज्यादा लोग वहां पर मौजूद नहीं थे, केवल परिवार के बीच हल्दी मेहंदी का फंक्शन हो रहा था। इसीलिए जल्द ही अब राजवीर की नजर वंशिका पर जाकर ठहर गई थी। वंशिका को देखते ही राजवीर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और वो अरमान की ओर देखकर खतरनाक आवाज में बोला, मुझे तो लगा था कि तुमने इस लड़की का अब तक अंत कर दिया होगा। ये लड़की जिंदा सही सलामत तुम्हारे घर पर क्या कर रही है? अब जैसे ही राजवीर ने ये बोला, अरमान हैरान हो गया और बेपरवाही से बोला, आप कहना क्या चाहते हैं? राजवीर वंशिका की ओर गुस्से भरी नजरों से इशारा करके बेरुखी से बोला, इसी लड़की ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी, तो ये इस तरह से हल्दी के फंक्शन में क्या कर रही है? अब अरमान राजवीर को क्या बताता कि उसकी बीवी की वजह से वो अभी तक वंशिका की जान नहीं ले पाया है। तभी आस्था ने वंशिका को इशारा किया। वंशिका तुरंत आस्था का इशारा मिलते ही राजवीर के सामने जाकर बेपरवाही से खड़ी हो गई थी और एक बार फिर उसके हाथों में एक छोटा सा चाकू था। उसने उस चाकू से राजवीर पर वार करने की कोशिश करते हुए नफरत भरी आवाज में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद की है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब जैसे ही वंशिका ने इस तरह से राजवीर पर हमला किया, सब लोग चौंक गए थे। वहीं ध्रुव तो मुंह खोले वंशिका को ही देख रहा था। वहीं आहान, जो रौनक की सेवा में खड़ा हुआ था, अब जैसे उसने ये सब कुछ देखा तो उसकी भी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है।
ठीक उसी वक्त आस्था हल्का सा मुस्कुराई और अविनाश को इशारा किया। अविनाश ने जल्दी ही अपनी पॉकेट की जेब में से वो वाला लॉकेट निकाला जिस लॉकेट की वजह से राजवीर ने इतने सारे लोगों की बेरहमी से जान ली थी। वो लॉकेट अविनाश ने आस्था के हाथों में थमा दिया था और आस्था ने जल्दी ही मौका देखकर उस लॉकेट को अपने गले में पहन लिया था। दूसरी ओर इन सारे मामलों से नानी माँ को दूर रखा गया था, क्योंकि आस्था तक जानती थी नानी माँ ये सब कुछ सहन नहीं कर पाएंगी। इसीलिए नानी माँ की सेहत उसके लिए ज्यादा जरूरी थी, वो उनकी जान के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। अबीर नानी माँ को आराम करने को कहकर आश्वासन दिया कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करें, सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा। और नानी माँ को बाहर ना आने के लिए मना करने के बाद अबीर बाहर आ गया था। हालांकि नानी माँ का इरादा इस तरह से अंदर रुकने का नहीं था, लेकिन इस फिलहाल आस्था की कसम अबीर ने नानी माँ को दी थी, इसीलिए मजबूरन नानी माँ कुछ नहीं कर सकती थी। इसीलिए मजबूरन वो वहीं बैठी रहीं और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी, ताकि आस्था और सारा परिवार मुसीबत से दूर रहे और वो ठीक ठाक रहे। दूसरी ओर उसी वक्त वंशिका को ऐसा करते हुए देखकर अरमान अब तुरंत वंशिका के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया और उसका गला पकड़कर उसे मारने की कोशिश करने लगा, क्योंकि इस तरह से अरमान के सामने भला कोई उसके गुरुजी पर हाथ कैसे उठा सकता था। और अरमान सिंघानिया राजवीर जिंदल के लिए उतना ही पोजेसिव था जितना कि आस्था के लिए था। लेकिन आस्था ये जानती थी कि अगर अरमान के सामने वंशिका राजवीर पर हमला करेंगी तो अरमान खुद को रोक नहीं पाएगा और अरमान उल्टा वंशिका पर हमला करेगा। ठीक उसी वक्त आस्था अब राजवीर और अरमान के सामने जा पहुंची और वंशिका को बचाने के लिए उसने वंशिका को ठीक अपने पीछे खींच लिया था और अरमान के सामने जाकर खड़ी हो गई। अब जैसे ही राजवीर की नज़र आस्था पर पड़ी और साथ ही साथ उसके गले में पहने हुए लॉकेट पर पड़ी, अब तो राजवीर जिंदल के खून में आग लगने लगी थी। उस लॉकेट को पाने के लिए तो वो लोगों का गला तक काट दिया करता था, लेकिन ये लॉकेट जो कि आखिरी पांचवां लॉकेट सेट था यहाँ इस तरह से मौजूद होगा, राजवीर को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। अचानक राजवीर ने अरमान को एक तरफ धक्का दे दिया और आस्था की तरफ झपटने के लिए बढ़ने लगा।